एकत्र ज्ञानगोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञानगोष्ठी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार की दुनिया में गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर है पर अक्सर दिखाई नहीं देता। ये है नेटवर्क विज्ञान, यानी जुड़ाव का विज्ञान, कनेक्शंस का विज्ञान।
सही कहा। और इस दिलचस्प विषय को समझने के लिए हम आज इतालवी भौतिक विज्ञानी ग्वीडो काल्डरेली के काम पर ध्यान देंगे। खास तौर पर उनकी किताबें हैं नेटवर्क्स और नेटवर्क्स ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इनसे जो हमें आइडियाज मिले हैं, ये किताबें बहुत अच्छे से समझाती हैं कि कैसे हमारे दोस्त, इंटरनेट, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि हमारे शरीर की कोशिकाएं भी सब एक तरह के नेटवर्क के नियमों से ही चलती हैं।
और आजकल ये समझना तो और भी जरूरी हो गया है ना?
बिल्कुल।
जब हम देखते हैं कि कैसे कोई बीमारी देखिए दुनिया भर में फैल जाती है, या कैसे शेयर बाजार एकदम से गिर जाता है, या कोई खबर सोशल मीडिया पर उफ जंगल की आग की तरह
हाँ हाँ वायरल हो जाती है,
इन सबके पीछे कहीं ना कहीं नेटवर्क ही तो है।
बिल्कुल। काल्डरेली का काम हमें असल में यही सिखाता है कि चीजों को अकेले अकेले देखने के बजाय उनके बीच के कनेक्शंस, उनके जुड़ाव को देखना कितना अहम है।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इन कनेक्शनों के इस आकर्षक दुनिया की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और हमारी जिंदगी को कैसे बनाते बिगाड़ते हैं।
जरूर।
तो सबसे पहले, ये ग्वीडो काल्डरेली हैं कौन और क्यों उनका नजरिया इस विषय पर इतना खास माना जाता है?
देखिए, ग्वीडो काल्डरेली इटली के एक जाने माने भौतिक विज्ञानी हैं और वो जटिल प्रणालियों कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और नेटवर्क थ्योरी पर अपने काम के लिए काफ़ी मशहूर हैं। वो इटली की IMT लूका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की रिसर्च में भी काफ़ी एक्टिव हैं। उनकी जो बैकग्राउंड है वो सैद्धांतिक भौतिकी यानी थियोरेटिकल फिजिक्स में है और यही चीज़ उन्हें चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने में मदद करती है।
अच्छा, एक भौतिक विज्ञानी नेटवर्क्स के बारे में लिख रहे हैं, ये तो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर तो हम समाज शास्त्रियों या कंप्यूटर वैज्ञानिकों को इस पर बात करते सुनते।
हाँ, और यही तो उनकी खासियत है। एक भौतिक विज्ञानी होने के नाते उन्हें अलग अलग दिखने वाली चीज़ों में छुपे हुए पैटर्न और क्या कहते हैं यूनिवर्सल नियम खोजने की एक तरह से आदत होती है। जहाँ कोई सिर्फ सामाजिक नेटवर्क देखेगा या कोई सिर्फ इंटरनेट, काल्डरेली इन सब के पीछे के गणितीय और ढांचागत सिद्धांतों को तलाशते हैं। वो पूछते हैं, क्या इन अलग अलग नेटवर्कों में कुछ एक जैसे नियम काम कर रहे हैं?
अच्छा, यानी वो सिर्फ थ्योरी पर ही काम नहीं करते बल्कि असल दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी जुड़े हैं।
सही पकड़ा। उन्होंने सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और तकनीकी कंपनियों के साथ भी काम किया है, नेटवर्क एनालिसिस को वास्तविक समस्याओं पर लागू किया है, तो उनके पास गणित की गहरी समझ भी है और जमीनी हकीकत का अनुभव भी, और ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है और यही उन्हें इस विषय पर एक भरोसेमंद आवाज बनाता है। वो मुश्किल विचारों और असल जिंदगी के बीच एक पुल बनाते हैं, कह सकते हैं।
चलिए अब जरा इन किताबों पर आते हैं। इनका मुख्य सार क्या है? काल्डरेली का सेंट्रल मैसेज क्या देना चाह रहे हैं वो?
देखिए, दोनों किताबों का जो मूल विचार है वो एक ही है कि नेटवर्क हमारे आसपास की लगभग हर जटिल चीज का बुनियादी ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, चाहे वो इंसान हो, उनके रिश्ते हो, तकनीक हो, अर्थव्यवस्था हो या प्रकृति हो। काल्डरेली कहते हैं कि अगर हमें आज की इस उलझी हुई दुनिया को समझना है तो हमें नेटवर्क विज्ञान यानी चीजों के जुड़ने और एक दूसरे पर असर डालने के तरीकों को समझना ही होगा।
तो ये सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि चीजें जुड़ी हुई हैं,
नहीं नहीं,
बल्कि ये समझा रहे हैं कि कैसे जुड़ी हुई हैं और उसका क्या मतलब है।
ये ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल।
वो इस सवाल का जवाब देती हैं कि हम उन छिपे हुए कनेक्शन के पैटर्न को कैसे समझें जो तय करते हैं कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, जानकारी कैसे वायरल होती है, फाइनेंशियल मार्केट स्थिर रहेगा या गिरेगा और पर्यावरण कितना मजबूत है। उनका कहना है कि पारंपरिक विज्ञान अक्सर चीजों को तोड़कर अलग अलग करके देखता है,
आइसोलेशन में। हाँ
हाँ
हाँ।
जबकि काल्डरेली कह रही हैं कि हिस्सों, नोड्स के साथ साथ उनके बीच के रिश्तों, एजेस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।
शायद रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देना।
हाँ बिल्कुल। और कई बार तो किसी चीज की नेटवर्क में जो पोजिशन है उसकी जगह वो उसकी अपनी खासियत से भी ज्यादा मायने रखती है। किताबें दिखाती हैं कि कैसे नेटवर्क के सरल से नियम मिलके बहुत जटिल और अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड नतीजे पैदा कर सकते हैं। इसे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज या उभरते हुए गुण कहते हैं। ये गुण आप अलग अलग हिस्सों को देखकर कभी समझ ही नहीं सकते।
ये तो सोचने वाली बात है। तो ये किताबें हमें नेटवर्क की दुनिया की एक तरफ से सैर कराती हैं।
हाँ बिल्कुल, ये यात्रा शुरू होती है जुड़ाव के बिल्कुल बेसिक सवालों से कि चीजें कैसे जुड़ती हैं, और फिर धीरे धीरे ये हमें गहरे सवालों तक ले जाती है, जैसे कि सिस्टम कैसे काम करते हैं, कितने लचीले होते हैं और क्या हम उनके व्यवहार का अंदाजा लगा सकते हैं। वो दिखाते हैं कि नेटवर्क हर जगह है, हमारे दिमाग के न्यूरॉन से लेकर सोशल मीडिया तक, सप्लाई चेन से लेकर इंटरनेट तक। फिर वो समझाते हैं कि ये नेटवर्क बनते कैसे हैं, बदलते कैसे हैं, और हमारे रोजमर्रा के जीवन पर इनका क्या असर पड़ता है।
ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं, इन किताबों के कुछ मुख्य विचारों या हिस्सों पर बात करते हैं। शुरुआत कहां से होती है आमतौर पर?
शुरुआत होती है बिल्कुल बुनियादी बातों से। पहला अध्याय अक्सर नेटवर्क की परिभाषा देते हैं, नोड्स यानी चीजें, लोग, कंप्यूटर, और एजेस उनके बीच के कनेक्शंस, रिश्ते, लिंक्स। लेकिन वो तुरंत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये गणितीय चीजें हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनसे हम जटिल सिस्टम के छिपे हुए पैटर्न समझ सकते हैं।
अच्छा, और यहीं पर वो कोनिग्सबर्ग पुल वाली मशहूर कहानी आती है ना, वो तो बहुत सुना है।
हाँ हाँ बिल्कुल, वो क्लासिक उदाहरण है। 18वीं सदी में गणितज्ञ थे लियोनार्ड यूलर, उनके सामने एक पहेली आई थी। कोनिग्सबर्ग शहर में 7 पुल थे जो नदी के 2 किनारों और 2 द्वीपों को जोड़ते थे। सवाल ये था, क्या शहर में इस तरह घूमना संभव है कि हर पुल से ठीक एक बार गुजरा जाए?
और यूलर ने इसे हल कैसे किया, मतलब बिना चले?
हाँ, उन्होंने समस्या का नक्शा बनाया, जमीन के हिस्सों को नोड्स यानी बिंदु बना दिया, और पुलों को एजेस यानी रेखाएं। फिर उन्होंने गणित से साबित किया कि ऐसा रास्ता संभव ही नहीं है। और ऐसा करते हुए उन्होंने गणित थ्योरी की नींव रख दी, जो आज नेटवर्क विज्ञान का आधार है। ये कहानी यही सिखाती है कि किसी जटिल समस्या को समझने के लिए उसके कनेक्शन का ढांचा समझना कितना जरूरी है।
इसके बाद शायद नेटवर्क के अलग अलग प्रकारों पर बात होती है, जैसे वो रैंडम नेटवर्क।
सही, अगला कदम अक्सर रैंडम नेटवर्क मॉडल होता है, जिसे अर्डोज और रेनी ने विकसित किया था। इसमें माना जाता है कि नोड्स के बीच कनेक्शन पूरी तरह से संयोग पर यानी रैंडम चांस पर आधारित होते हैं। ज्यादातर नोड्स के लगभग बराबर कनेक्शन होते हैं। ये थ्योरी के लिए तो जरूरी है, पर काल्डरेली बताते हैं कि असल दुनिया के ज्यादातर नेटवर्क इतने सीधे साधे नहीं होते।
तो असली दुनिया के नेटवर्क कैसे होते हैं? क्या यहीं पर वो स्मॉल वर्ल्ड या छोटी दुनिया वाला आइडिया आता है?
बिल्कुल, यहीं से चीजें ज्यादा दिलचस्प होती हैं। स्मॉल वर्ल्ड घटना, जिसे 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन यानी 6 मुलाकातों की दूरी के नाम से भी जाना जाता है, ये बताती है कि ज्यादातर बड़े नेटवर्कों में किन्हीं भी 2 लोगों या चीजों के बीच का रास्ता हैरानी की बात है कि बहुत छोटा होता है। भले ही हमारे आसपास के लोग आपस में खूब जुड़े हों, जिसे क्लस्टरिंग कहते हैं।
लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब अगर मेरे दोस्त आपस में ही दोस्त हैं, तो मैं दुनिया के दूसरे कोने में किसी से इतनी जल्दी कैसे जुड़ सकता हूँ?
इसका राज छुपा है कुछ लंबे कनेक्शनों में, जिन्हें अक्सर कमजोर रिश्ते या वीक टाइज कहते हैं। स्टैनली मिलग्रैम के प्रयोगों ने और बाद में गणितीय मॉडलों ने दिखाया कि नेटवर्क में बस कुछ ऐसे दूर के कनेक्शन पूरी दुनिया को नाटकीय रूप से छोटा बना देते हैं।
कमजोर रिश्ते, सुनने में तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगते, मतलब कमजोर हैं तो?
यही तो मजा है, ये नेटवर्क विज्ञान की सबसे हैरान करने वाली लेकिन जरूरी खोजों में से एक है। सही में, हमारे वो दूर के परिचित जिनसे हम कभी कभार ही मिलते हैं, अक्सर वही हमें नई जानकारी, नए मौके और नए विचारों से मिलाते हैं।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि वो हमें उन दुनियाओं या ग्रुप से जोड़ते हैं जिनसे हमारे करीबी दोस्त नहीं जुड़े होते। सोचिए, कोई नई नौकरी या बिजनेस आइडिया अक्सर किसी ऐसे ही कमजोर रिश्ते से मिलता है।
वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। और फिर आते हैं वो स्केल फ्री नेटवर्क, जिनके बारे में आजकल काफी चर्चा होती है।
हाँ, स्केल फ्री नेटवर्क एक और बड़ी खोज है। ये ऐसे नेटवर्क है जहाँ कनेक्शन का बंटवारा रैंडम नहीं होता। इनमें एक नियम दिखता है जिसे पावर लॉ कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ नोड्स, जिन्हें हब कहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, जबकि ज्यादातर नोड्स के कनेक्शन बहुत कम होते हैं। इंटरनेट, सोचिए गूगल या फेसबुक जैसे हब, एयरलाइन के रूट, कुछ बड़े एयरपोर्ट हब होते हैं, या वैज्ञानिक लेखों के साइटेशन नेटवर्क, ये सब स्केल फ्री हैं।
और ये हब कैसे बन जाते हैं? क्या ये बस किस्मत की बात है, कोई भी बन जाता है?
नहीं, इसके पीछे एक प्रक्रिया काम करती है जिसे प्रेफरेंशियल अटैचमेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अमीर और अमीर होते जाते हैं या लोकप्रिय और लोकप्रिय होते जाते हैं।
अच्छा।
जब नेटवर्क बढ़ता है तो नए आने वाले नोड उन पुराने नोड से जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं जिनके पास पहले से ही ज्यादा कनेक्शन है। जैसे कोई नई वेबसाइट ज्यादातर उन बड़ी जानी मानी साइट्स को ही लिंक करती है, ये प्रक्रिया अपने आप हब बना देती है।
तो हमने नेटवर्क के प्रकार समझ लिए, रैंडम, स्मॉल वर्ल्ड, स्केल फ्री। इसके बाद किताबें शायद उनके व्यवहार, उनके बदलने के तरीकों पर ध्यान देती होंगी।
सही। अगले हिस्से नेटवर्क की गतिशीलता मतलब डायनामिक्स और उनके विकास यानी इवोल्यूशन पर होते हैं। नेटवर्क स्थिर नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। जानकारी कैसे फैलती है, कोई महामारी कैसे काबू से बाहर होती है या वित्तीय संकट जैसी एक के बाद एक होने वाली विफलताएं जिन्हें कैस्केड फेलियर्स कहते हैं, वो नेटवर्क के ढांचे पर कैसे निर्भर करती हैं। यहाँ लचीलापन, बड़े बदलाव के बिंदु यानी टिपिंग पॉइंट्स जैसी बातें आती हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे छोटे बदलाव कभी कभी पूरे सिस्टम में बड़े उलटफेर ला सकते हैं।
फिर शायद कुछ खास तरह के नेटवर्कों पर बात होती है, जैसे हमारे सोशल नेटवर्क, वो तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, सामाजिक नेटवर्क पर खास ध्यान दिया जाता है। कैसे नेटवर्क में आपकी जगह, आपके व्यवहार, आपके मौकों, यहाँ तक कि आपकी सेहत पर भी असर डालती है। सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी, स्ट्रक्चरल होल्स मतलब नेटवर्क में वो खाली जगहें जहाँ आप दो अलग ग्रुप को जोड़ने वाले पुल बन सकते हैं, इन सब पर चर्चा होती है। और ये सिर्फ ऑनलाइन फेसबुक ट्विटर पर ही नहीं बल्कि ऑफलाइन दोस्तों रिश्तेदारों तक सब पर लागू होता है।
और जीव विज्ञान में भी नेटवर्क उतने ही अहम है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि बायोलॉजी में नेटवर्क
उतने ही। सोचिए, हमारी कोशिकाओं के अंदर जीन्स का एक पूरा नेटवर्क है जो तय करता है कि कोशिका क्या करेगी। प्रोटीन्स का नेटवर्क है जो शरीर के सारे काम करता है। और अगर बाहर देखें तो जंगल में जानवरों का फूड वेब कौन किसे खाता है, भी तो एक नेटवर्क ही है। नेटवर्क विश्लेषण ने जीव विज्ञान, बीमारियों और विकास को समझने में वाकई क्रांति ला दी है।
और अर्थव्यवस्था, हमने इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात की, लेकिन शायद वित्तीय नेटवर्क पर थोड़ा और सोचना चाहिए, खासकर 2008 के संकट को देखते हुए। वो तो बहुत ही बड़ा उदाहरण है।
हाँ, वित्तीय नेटवर्क एक बहुत ही अहम उदाहरण है। काल्डरेली बताते हैं कि कैसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच के जो आपसी लेन देन और जुड़ाव हैं, वो एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें प्रणालीगत जोखिम मतलब सिस्टेमिक रिस्क पैदा हो सकता है। 2008 का संकट साफ दिखाता है कि कैसे एक बड़े हब जैसे लेमन ब्रदर्स बैंक के गिरने से पूरा नेटवर्क हिल सकता है और संकट दुनिया भर में फैल सकता है। ये नेटवर्क की विफलता का एक खतरनाक उदाहरण है।
तो इन सब अलग अलग उदाहरणों और विचारों से गुजरते हुए कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या उभर कर आते हैं, मेन थीम्स क्या हैं?
पहला और शायद सबसे बड़ा संदेश है नेटवर्क के नियमों की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। कमाल की बात यह है कि जो गणितीय नियम दोस्तों के ग्रुप को समझने में मदद करते हैं, वही नियम इंटरनेट या शरीर की कोशिकाओं पर भी लागू हो सकते हैं। इसका मतलब है कि नेटवर्क विज्ञान हमें अलग अलग दिखने वाली चीजों में छुपे एक जैसे पैटर्न को पकड़ने का एक शक्तिशाली औजार देता है।
अच्छा, दूसरा क्या होगा? शायद वो कि पूरा सिस्टम सिर्फ उसके हिस्सों का जोड़ नहीं होता, कुछ ज्यादा होता है।
बिल्कुल। दूसरा है इमर्जेंस या सामूहिक व्यवहार का उभरना। नेटवर्क ऐसे गुण दिखाते हैं जो सिर्फ उनके हिस्सों के आपसी मेल जोल से पैदा होते हैं। इन्हें आप अलग अलग हिस्सों को देखकर नहीं समझ सकते, जैसे दिमाग के अरबों न्यूरॉन मिलकर चेतना कैसे पैदा करते हैं या हजारों निवेशक मिलकर शेयर बाजार का उतार चढ़ाव कैसे तय करते हैं। ये हमें चीजों को पूरी तस्वीर में देखने के लिए कहता है, होलिस्टिक व्यू।
और वो मजबूती और कमजोरी वाला विरोधाभास भी काफी दिलचस्प है, पैराडॉक्स।
हाँ, वो तीसरा अहम विषय है, मजबूती बनाम भेद्यता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ रोबस्टनेस एंड वल्नरेबिलिटी। स्केल फ्री नेटवर्क जिनमें हब होते हैं आम गड़बड़ियों मतलब रैंडम फेलियर के प्रति बहुत मजबूत होते हैं। अगर कोई छोटा मोटा नोड फेल हो जाए तो नेटवर्क अक्सर चलता रहता है, लेकिन वो जानबूझकर किए गए हमलों टारगेटेड अटैक्स के प्रति बहुत नाजुक होते हैं। अगर आप मुख्य हब पर हमला करें तो पूरा सिस्टम ढह सकता है।
हाँ, सोचिए इंटरनेट पर किसी छोटी वेबसाइट के बंद होने से क्या फर्क पड़ता है, पर अगर गूगल या अमेज़न जैसा कोई हब बंद हो जाए तो तबाही मच जाएगी।
बिल्कुल।
चौथा विषय शायद सूचना या बीमारी फैलने के तरीके से जुड़ा होगा, स्प्रेडिंग से,
खबर हो, फैशन हो या कोई वायरस, नेटवर्क में कैसे फैलती है ये पूरी तरह नेटवर्क के ढांचे पर निर्भर करता है। ये मार्केटिंग से लेकर महामारी रोकने तक हर चीज के लिए जरूरी है। नेटवर्क का आकार और कनेक्शन ये तय करते हैं कि कोई चीज रुकेगी या फैलेगी।
और पांचवा जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगता है वो ये कि नेटवर्क में आपकी जगह मायने रखती है, आपकी पोजिशन।
हाँ, ये एक गहरी अंतर्दृष्टि है। नेटवर्क में स्थिति नतीजों को तय करती है। अक्सर ये बात कि आप नेटवर्क में कहाँ हैं, किससे जुड़े हैं, ये आपकी अपनी निजी काबिलियत से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये तय करता है कि आपको क्या जानकारी मिलेगी, क्या मौके मिलेंगे। जैसे दो अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ने वाला पुल बनना बहुत फायदेमंद हो सकता है।
हाँ, भारत में तो हम सही कनेक्शन के महत्व को तो रोज ही देखते हैं। ये तो बिल्कुल सच है,
है ना?
क्या इन किताबों में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो खास तौर पे दिमाग में रह जाते हैं, जिन्हें हम कोट की तरह याद रख सकें, कुछ यादगार बातें?
हाँ, कई ऐसे विचार हैं जो कार्ल डायरेली के काम का सार बताते हैं। एक तो ये है, आप कह सकते हैं नेटवर्क सिर्फ रिश्तों का नक्शा नहीं है, वे वो बुनियादी ढांचा है जिस पर हमारी जटिल दुनिया टिकी हुई है। ये बताता है कि नेटवर्क सिर्फ मॉडल नहीं बल्कि हकीकत का आधार है, फंडामेंटल है।
और वो कमजोर रिश्तों की ताकत वाला विचार, उसे कैसे कहेंगे? वो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव था।
उसे कुछ इस तरह कह सकते हैं, एक चौंकाने वाली सच्चाई। हमारे सबसे दूर के कनेक्शंस अक्सर हमें सबसे बड़े अवसर देते हैं, क्योंकि वो हमें नई दुनियाओं से जोड़ते हैं। ये दिखाता है कि नेटवर्क कैसे हमारी आम समझ को चुनौती देते हैं, जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं वैसा ही हो।
सही। और स्केल फ्री दुनिया में जो असमानता दिखती है उसके बारे में, वो हब्स वाली बात,
उसके लिए कहा जा सकता है स्केल फ्री दुनिया में कनेक्शन का बंटवारा बहुत असमान होता है। कुछ तारे आसमान पर राज करते हैं जबकि बाकी बस टिमटिमाते रहते हैं। ये हब के दबदबे और कई सिस्टम में दिखने वाली इनइक्वालिटी, असमानता के गणितीय जड़ को दिखाता है।
और नेटवर्क की विफलता के बारे में, वो सिर्फ एक चीज के फेल होने से नहीं होती।
सही, एक अहम विचार ये है, नेटवर्क की विफलता अक्सर किसी एक पुर्जे की खराबी नहीं होती बल्कि ये उस डोमिनो इफेक्ट का नतीजा होती है जिसे नेटवर्क का ढांचा खुद संभव बनाता है। ये प्रणालीगत रोस्क और संकटों के फैलने के तरीके पर जोर देता है। इट्स नॉट अबाउट वन पार्ट, इट्स अबाउट द स्ट्रक्चर।
तो इन सभी विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिकली?
कई तरीकों से। निजी स्तर पर देखें तो अपने सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क को समझकर हम बेहतर मौके पा सकते हैं। सिर्फ ज्यादा लोगों को जानने के बजाय ये सोचना जरूरी है कि हमारा नेटवर्क कितना डाइवर्स है। क्या हम अलग अलग तरह के लोगों से जुड़े हैं? क्या हम कहीं दो ग्रुप्स के बीच पुल, स्ट्रक्चरल होल बन सकते हैं, वो जोड़ने वाली कड़ी?
हाँ, ये तो सोचने लायक है। और कामकाज या बिजनेस में
वहां कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
बिजनेस में नेटवर्क विश्लेषण बाजार को समझने में मदद कर सकता है, सप्लाई चेन की कमजोरियों को पहचानने में मदद कर सकता है, जैसे क्या हम किसी एक ही बड़े सप्लायर पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, या टीम को बेहतर ढंग से बनाने में मदद कर सकता है। मार्केटिंग में प्रभावशाली लोगों यानी इन्फ्लुएंसर्स जो नेटवर्क में हब जैसे होते हैं, उन तक पहुंचना ज्यादा असरदार हो सकता है।
क्या ये विचार सरकारों या बड़े संगठनों के लिए भी काम के हैं पॉलिसी लेवल पर? हाँ बिल्कुल, जन स्वास्थ्य अभियानों को डिजाइन करने में ये समझना कि बीमारी या जानकारी कैसे फैलती है और सुपर स्प्रेडर्स कौन हो सकते हैं, ये बहुत मददगार है। शहर योजना में ट्रैफिक या परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय नियामक और बैंकों के नेटवर्क का विश्लेषण करके बड़े संकटों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं।
और तकनीक और नई खोजों में भी इसका इस्तेमाल होता होगा, इनोवेशन में?
जरूर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, गूगल सर्च कैसे नतीजे दिखाता है, ये सब कहीं ना कहीं नेटवर्क सिद्धांतों पर आधारित है। किसी कंपनी के अंदर नए आइडिया कैसे फैलते हैं और इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसे समझने के लिए भी नेटवर्क विश्लेषण उपयोगी है।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? आपके लिए सबसे हैरान करने वाली या अहम बात क्या रही इस सब में?
लग थलग देखने के बजाय उनके कनेक्शंस पर ध्यान देना ये सोच में एक बुनियादी बदलाव लाता है। और ये विचार कि किसी सिस्टम का व्यवहार अक्सर उसके हिस्सों से ज्यादा उसके ढांचे पर, उसके स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, ये बहुत गहरा है।
सही कहा। और मेरे लिए वो मजबूती बनाम कमजोरी वाला विरोधाभास, वो पैराडॉक्स बहुत मायने रखता है। कि कैसे इंटरनेट या वित्तीय प्रणाली जैसे सबसे जुड़े हुए और मजबूत दिखने वाले नेटवर्क्स कुछ खास जगहों पर चोट लगने से इतने बिखर सकते हैं, इतने वल्नरेबल हो सकते हैं। ये आज की आपस में जुड़ी दुनिया के लिए एक जरूरी सबक है कि जुड़ाव के अपने खतरे भी हैं।
और ये समझना कि नेटवर्क में हमारी स्थिति कितनी मायने रखती है, ये भी सोचने पर मजबूर करता है ना? ये सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये भी है कि हम किसे जानते हैं और नेटवर्क में कहाँ खड़े हैं, वो पोजीशन।
बिल्कुल। शायद सुनने वालों के लिए एक विचार ये हो सकता है कि वे अपने जीवन के किसी एक पहलू को, शायद अपने काम के संपर्कों को या जिस तरह से उन्हें खबरें मिलती हैं, एक नेटवर्क की तरह देखें। उस नेटवर्क का ढांचा कैसा है? क्या उसमें कोई खास हब है या कोई कमजोर कड़ी, या कहीं आप पुर बन सकते हैं? इस तरह सोचने से शायद कुछ नई बातें समझ आएं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब कितने अदृश्य धागों से जुड़े हुए हैं और वो धागे कैसे हमारी दुनिया को बुनते हैं।
हाँ, और कैसे ये अदृश्य धागे चुपचाप हमारे जीवन को आकार देते रहते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।